एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अनोखी किताब पर बात करने वाले हैं, द एजुकेशन ऑफ हेनरी एडम्स। नाम तो आत्मकथा है, पर यह उससे कहीं ज्यादा है।
हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का संस्मरण भी है, एक दार्शनिक यात्रा भी, और इतिहास पर एक बहुत ही अलग सी टिप्पणी।
और दिलचस्प बात ये कि 1907 में तो ये निजी तौर पर छपी थी, फिर लेखक की मृत्यु के बाद 1918 में सबके लिए आई और 1919 में इसे पुलित्जर पुरस्कार भी मिला।
और इसके लेखक हेनरी ब्रुक्स एडम्स वो भी कुछ कम दिलचस्प शख्सियत नहीं थे। 1838 से 1918 तक का उनका जीवन और परिवार, अमेरिका का शायद सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार।
हाँ, उनके परदादा जॉन एडम्स, दादा जॉन क्विंसी एडम्स दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, और हेनरी एडम्स खुद भी इतिहासकार, पत्रकार, प्रोफेसर, यहाँ तक कि उपन्यासकार भी रहे हैं।
सही कहा, लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास, या कहें कि इस किताब का जो हुक है, वो ये है कि इतने प्रतिष्ठित परिवार से होने, इतनी बेहतरीन शिक्षा पाने के बावजूद
उन्होंने अपना पूरा जीवन ये मानते हुए बिताया कि वो असफल रहे।
बिल्कुल, कि उनकी जो शिक्षा थी वो उन्हें उनके अपने समय यानी 20वीं सदी की शुरुआत के लिए तैयारी नहीं कर पाई।
ये किताब कोई अपनी कामयाबियों का जश्न नहीं है,
बल्कि ये तो अपनी कथित कमियों का, अपर्याप्तताओं का एक गहरा, बल्कि कहना चाहिए व्यंग्यात्मक विश्लेषण है।
हाँ,
और ये चीज आज भी बहुत मायने रखती है। एडम्स की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कह सकते हैं 18वीं सदी के तर्क और व्यवस्था वाले विचारों के साथ पला बढ़ा,
और फिर उसे 20वीं सदी की उथल पुथल, नई टेक्नोलॉजी, तेज रफ्तार बदलाव का सामना करना पड़ा।
एकदम, ये जो अनुभव है ना कि आपकी पुरानी सीख, आपकी समझ नए जमाने में अप्रासंगिक हो रही है, ये आज डिजिटल युग में बहुत से लोगों को महसूस होता होगा।
और एक और बात जो इस किताब को खास बनाती है, उन्होंने इसे तीसरे पुरुष यानी थर्ड पर्सन में लिखा है।
हाँ, जैसे वो हेनरी एडम्स नाम के किसी और व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हो, एक तरह की दूरी बनाकर, शायद अपनी ही जिंदगी की उथल पुथल और अपनी तथाकथित विफलताओं को ज्यादा वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने की कोशिश।
समझना जरूरी है कि उनके लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं था।
हाँ बिल्कुल नहीं, उनके लिए शिक्षा का मतलब था जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार होना, बदलते वक्त के साथ ढल पाना, और इसी पैमाने पर वो खुद को विफल पा रहे थे।
तो चलिए एडम्स की इस अनोखी शिक्षा की यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उनके शुरुआती सालों से शुरू करते हैं, जन्म 1838 में एडम्स राजवंश में।
हाँ, तो उन पर हमेशा अपने पूर्वजों, खासकर राष्ट्रपतियों की विरासत का साया रहा। बचपन बॉस्टन और क्विंसी मैसाचुसेट्स में बीता, और वो बचपन ही कह सकते हैं दो दुनियाओं का संगम या टकराव था।
दो दुनियाएं कैसी?
एक तरफ तो उनके दादा जॉन क्विंसी एडम्स थे, वो 18वीं सदी के मूल्यों, ज्ञानोदय के विचारों, कर्तव्य, शास्त्रीय शिक्षा, इन सब पर जोर देते थे।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ था 19वीं सदी का तेजी से बदलता हुआ बोस्टन। उद्योग, बैंक, रेलमार्ग, एक नई दुनिया उभर रही थी जिसे शायद पुराना एडम्स परिवार थोड़ी शक की निगाह से देखता था।
तो ये एहसास उन्हें बचपन से ही था कि वो जैसे दो युगों के बीच में खड़े हैं।
हाँ, उन्होंने खुद को एक पुतले या मैनिकिन जैसा महसूस करने की बात लिखी है, जैसे बाहरी ताकतें, उम्मीदें, परंपराएं उन्हें आकार दे रही हों।
वो स्कूल वाला किस्सा भी है ना?
हाँ, वो बहुत मशहूर है कि बचपन में जब उन्होंने स्कूल जाने से मना किया तो उनके दादाजी, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, वो बिना कुछ बोले चुपचाप उनका हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल छोड़ाए। ये दिखाता है कि परंपरा और कर्तव्य का बोझ कितना था।
और उन्हें जल्दी ही लगने लगा कि ये जो 18वीं सदी की परवरिश है
वो उस बदलती दुनिया के लिए बेकार है। वो दुनिया अब वैसी रही ही नहीं थी।
फिर उनकी औपचारिक शिक्षा जैसे हार्वर्ड, उसका अनुभव कैसा रहा?
वो भी उनके हिसाब से एक विफलता ही थी। 1854 से 58 तक वो हार्वर्ड में थे। वो मजाक में लिखते हैं कि हार्वर्ड किसी गाय को चरना तो सिखा सकता था, पर दिमाग के लिए वहां कुछ खास नहीं था। न ज्ञान, न अनुशासन, न कोई दिशा।
ये तो काफी निराशाजनक शुरुआत थी।
हाँ, और ये निराशावाद उनकी किताब में आगे भी झलकता है।
फिर वो यूरोप गए, जिसे ग्रैंड टूर कहते थे।
हाँ, पारंपरिक तरीका था उस समय का। जर्मनी में कानून पढ़ने की कोशिश की, उसमें सफल नहीं हुए। रोम गए, पेरिस गए, लेकिन ये सब अनुभव उनके सवालों को और गहराई करते गए। वो खुद को हमेशा बाहरी महसूस करते रहे, फिट नहीं हो पा रहे थे कहीं।
तो फिर वो कौन सा मोड़ था जिसने उन्हें दुनिया की, जिसे कहते हैं, असली शिक्षा दी?
शायद सबसे अहम मोड़ आया 1861 में। अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया और उनके पिता को ब्रिटेन में अमेरिकी राजदूत बनाकर भेजा गया। हेनरी उनके निजी सचिव बनकर लंदन चले गए।
अच्छा, तो ये उनका पहला असली दुनिया से सामना था।
हाँ, कह सकते हैं। अगले 7 साल 1868 तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, सत्ता का खेल, देशों के आपसी रिश्ते, इन सब को बहुत करीब से देखा। ये किताबी बातें नहीं थी,
ये असलियत थे।
बिल्कुल, और वो असलियत अक्सर तरखीन, अप्रत्याशित और कई बार नैतिक रूप से भी धुंधली होती है।
इस अनुभव ने सरकार, शक्ति और इतिहास के बारे में उनके जो भी थोड़े बहुत आदर्शवादी विचार थे उन्हें तोड़ दिया।
यहीं से उनके मन में सत्ता को लेकर एक संदेह पैदा हुआ।
हाँ, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
हाँ।
1868 में जब वो अमेरिका लौटे तो वो एक बदले हुए इंसान थे।
अमेरिका लौटकर उन्होंने पत्रकारिता में हाथ आजमाया।
जी, वॉशिंगटन DC में। उस समय राष्ट्रपति ग्रांट का प्रशासन था और उस पर भ्रष्टाचार के काफी आरोप थे। एडम्स ने उस पर लिखने की कोशिश की,
लेकिन वहाँ भी निराशा।
हाँ, उन्हें लगा कि सिर्फ लिखने से, कलम की ताकत से व्यवस्था को बदलना बहुत मुश्किल है। सत्ता का खेल ज्यादा बड़ा था। ये उनकी शिक्षा का एक और पार्ट था जो विफलता जैसा लगा उन्हें। इसके बाद वो अकादमिक दुनिया में गए, हार्वर्ड में प्रोफेसर बने।
हाँ, 1870 में थोड़ी हिचके के साथ ही ये पद स्वीकार किया था। मध्ययुगीन इतिहास पढ़ाते थे और मजे की बात यह है कि बाहरी तौर पर वो यहाँ बहुत सफल रहे।
उन्होंने पढ़ाने के तरीकों में नए प्रयोग किए,
बहुत सेमिनार मेथड शुरू किया, छात्रों को मूल स्रोतों, प्राइमरी सोर्सेस को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षण पद्धतियों को आज भी याद किया जाता है।
लेकिन फिर भी वो अंदर से इसे भी एक तरह की विफलता ही मानते थे।
विडंबना यही है, उन्हें लगता था कि वो जो इतिहास पढ़ा रहे हैं वो मृत है, उसकी बातें वर्तमान की समस्याओं को हल करने में कोई मदद नहीं करती। तो उनकी नज़र में ये भी उनकी शिक्षा की कमी ही थी, वो वर्तमान को नहीं समझ पा रहे थे।
इसी दौरान 1872 में उनकी शादी भी हुई मारियन क्लोवर हूपर से।
जी, जो खुद भी एक जानी मानी और प्रतिभाशाली फोटोग्राफर थी, वो एडम्स के बौद्धिक जीवन में एक अहम साथी भी रहीं।
और फिर 1877 में उन्होंने प्रोफेसरशिप छोड़ दी।
हाँ, और वापस वॉशिंगटन आ गए ताकि पूरा ध्यान लिखने पे लगा सकें।
और यहीं उन्होंने अपना वो बड़ा ऐतिहासिक काम लिखा।
जी, वो 9 खंडों वाला विशाल ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थॉमस जेफरसन एंड जेम्स मैडिसन। इसे आज भी अमेरिकी इतिहास लेखन की एक महान उपलब्धि माना जाता है।
तो आखिरकार उन्हें एक तरह की मान्यता तो मिली
भारी दुनिया की नज़र में। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ी बौद्धिक उपलब्धि थी, लेकिन शायद एडम्स के लिए ये भी काफ़ी नहीं था। और फिर उनकी आत्मकथा द एजुकेशन में एक बहुत लंबा गैप आता है।
हाँ, लगभग 20 साल का, 1871 से 1892 तक का समय जैसे गायब है।
और उस चुप्पी के पीछे, उस गैप के पीछे उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी छिपी हुई है,
उनकी पत्नी की मृत्यु।
हाँ, 1885 में उनकी पत्नी क्लोवर, जो काफी समय से डिप्रेशन से जूझ रही थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। एडम्स ने अपनी आत्मकथा में उनका जिक्र तक नहीं किया है।
ये चुप्पी ही शायद उनके दुख की गहराई बताती है।
बिल्कुल, ये घटना उनके लिए एक भूचाल जैसी थी, इसने उनकी दुनिया बिखेर दी। ये उनकी व्यक्तिगत, शिक्षा की, प्रेम और साथ की शायद सबसे दर्दनाक विफलता थी।
इस हादसे का उन पर क्या असर पड़ा, उनकी सोच पर?
इसके बाद के एडम्स और ज्यादा अकेले और बेचैन नजर आते हैं। वो दुनिया भर में घूमने लगे, जापान, दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह, जॉन ला फार्गे जैसे दोस्तों के साथ, शायद शांति की तलाश में,
या शायद उस बिखराव को समझने की कोशिश में।
हाँ, कह सकते हैं उनकी खोज अब और ज्यादा दार्शनिक हो गई थी। वो जीवन और इतिहास के किसी गहरे अर्थ, किसी पैटर्न को ढूंढ रहे थे।
और यहीं से वो अपने उन दो प्रसिद्ध प्रतीकों तक पहुंचे, वर्जिन और डायनेमो।
जी, उन्होंने 13वीं शताब्दी की यूरोपीय कैथेड्रल, खासकर फ्रांस के चार्ट्रेस कैथेड्रल का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उन्हें वहां वर्जिन मैरी की भक्ति में एक एकीकृत करने वाली आध्यात्मिक शक्ति दिखी,
एक ऐसी शक्ति जिसने समाज को जोड़ा, कला और वास्तुकला को प्रेरणा दी।
बिल्कुल, ये उनके लिए एकता, यूनिटी का प्रतीक थी, एक साझा विश्वास, एक साझा उद्देश्य।
और इसके ठीक विपरीत था डायनेमो।
एकदम, 1900 में पेरिस में विश्व प्रदर्शनी लगी थी, वहां उन्होंने बड़े बड़े बिजली पैदा करने वाले जनरेटर यानी डायनेमो देखे। एडम्स के लिए ये मशीनें 20वीं सदी की नई, अनदेखी, अनियंत्रित शक्तियों का प्रतीक बन गई,
जैसे कि टेक्नोलॉजी, पूंजी, राष्ट्रवाद।
हाँ, ये बहुलता, मल्टीप्लिसिटी और बिखराव की ताकतें थीं। डायनेमो आधुनिक युग का नया देवता था, विशाल, मूक, रहस्यमयी, और जिसकी शक्ति किसी एक केंद्र में नहीं बल्कि हर तरफ फैली हुई थी।
तो इसी विरोधाभास से उनके इतिहास के सिद्धांत ने आकार लिया?
जी, उनका तर्क था कि इतिहास कोई सीधी रेखा में चलने वाली प्रगति की कहानी नहीं है, ये ऊर्जा के त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ एनर्जी की कहानी है। समाज वर्जिन की केंद्रित आध्यात्मिक ऊर्जा से डायनमो की बिखरी हुई भौतिक ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है,
और यहीं से उन्होंने अपना इतिहास का गतिशील सिद्धांत और त्वरण का नियम दिया।
हाँ, डायनामिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री और लॉ ऑफ एक्सेलरेशन।
ये त्वरण का नियम क्या था, इसका मतलब क्या था?
उनका मानना था कि बदलाव की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, और ये सामान्य गति से नहीं बल्कि घातीय, एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ रही है। हर नई खोज, हर नई तकनीक समाज में ज्यादा ऊर्जा छोड़ती है और बदलाव और तेज हो जाता है।
और उनकी चिंता ये थी कि
ये रफ्तार एक दिन इंसान के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, समाज इस तेजी को संभाल नहीं पाएगा और शायद अराजकता में डूब जाएगा।
ये बात तो आज के समय में टेक्नोलॉजी के इस दौर में बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगती है।
बेहद प्रासंगिक। और सोचिए, 1905 में जब उन्होंने द एजुकेशन खत्म की, तब भी वो यही महसूस कर रहे थे कि वो अशिक्षित हैं।
एक 18वीं सदी के व्यक्ति जो 20वीं सदी के इस भागदौड़ में खो गया है।
हाँ, एक ऐसी दुनिया में जो उनकी समझ और नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी।
तो इन सब अनुभवों और विचारों को मिलाकर देखें तो एडम्स का मूल दर्शन क्या बना, दुनिया को देखने का उनका नजरिया क्या था?
उनका नजरिया कह सकते हैं गहरे दार्शनिक निराशावाद, फिलोसॉफिकल पेसिमिज्म का था। वो जो अमेरिकी आशावाद था ना कि अमेरिका हमेशा तरक्की करेगा, मैनिफेस्ट डेस्टिनी वाली बातें, उन पर उन्हें यकीन नहीं था।
उन्हें इतिहास प्रगति की कहानी नहीं लगता था।
नहीं, उन्हें इतिहास पतन की, बिखराव की प्रक्रिया लगता था, एकता से बहुलता की ओर, व्यवस्था से अराजकता की ओर।
क्या इस पर विज्ञान का भी असर था, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स का जिक्र किया?
हाँ, ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम जो कहता है कि किसी बंद सिस्टम में एंट्रोपी यानी अव्यवस्था समय के साथ हमेशा बढ़ती है, एडम्स को लगा कि ये नियम समाज और इतिहास पर भी लागू होता है। चीजें स्वाभाविक रूप से बिखराव की तरफ जाती हैं जब तक कोई बहुत शक्तिशाली एकीकृत ताकत उन्हें रोक न ले,
जैसे मध्य युग में वर्जिन की शक्ति ने किया था उनके अनुसार।
बिल्कुल।
तो उनके दो मुख्य विचार जो आज भी अहम हैं, उन्हें अगर दोहराएं।
घटनाओं पर नहीं बल्कि उन अदृश्य ताकतों पर ध्यान देना चाहिए जो समाज को चलाती हैं, जैसे उन्होंने 13वीं सदी की आध्यात्मिक ताकत वर्जिन की तुलना 20वीं सदी की तकनीकी और आर्थिक ताकतों डायनमो से की। ये इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका था।
और दूसरा,
त्वरण का नियम। ये विचार कि बदलाव की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और वो भी तेजी से। हर नई तकनीक समाज में ऊर्जा का विस्फोट करती है और बदलाव को गति देती है, और उनकी चिंता कि ये रफ्तार इंसान की संभालने की क्षमता से आगे निकल जाएगी।
ये चेतावनी आज AI, इंटरनेट के युग में और भी ज्यादा सच लगती है।
निश्चित रूप से।
इन सब विचारों के पीछे उनकी अपनी क्या प्रेरणा थी, वो क्या ढूंढ रहे थे असल में?
मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज थी एकता, यूनिटी की तलाश। एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो उनके बिखरे हुए अनुभवों और उस खंडित होती दुनिया को जिसमें वो जी रहे थे उसे समझा सके। वो उस अराजकता में कोई पैटर्न, कोई अर्थ ढूंढना चाहते थे।
और अपनी परिवार की महान विरासत का बोझ, वो कितना बड़ा फैक्टर था?
वो भी बहुत बड़ा था। उनके पूर्वज देश के निर्माता थे, उनपे हमेशा उस विरासत को आगे बढ़ाने का दबाव था, और उन्हें लगता था कि वो उस भूमिका के लायक नहीं हैं, खासकर ऐसी दुनिया में जो उनके पूर्वजों के मूल्य, तर्क, संयम, सार्वजनिक सेवा को जैसे भूलती जा रही थी।
ये एहसास उनकी विफलता की भावना को और गहरा करता होगा।
हाँ, बिल्कुल।
उन्होंने इन निजी त्रासदियों और इस बौद्धिक कश्मकश का सामना कैसे किया, उनका तरीका क्या था मुकाबला करने का?
वो भावनाओं को सीधे सीधे व्यक्त करने से बचते थे। अक्सर वो बौद्धिकता का सहारा लेते थे, एक तरह की व्यंग्यात्मक दूरी बना लेते थे,
जैसे तीसरे पुरुष में लिखना।
हाँ, वो उसी का एक उदाहरण है। खुद को बाहर से देखना एक केस स्टडी की तरह, और अपनी पत्नी की मृत्यु का जिक्र न करना भी शायद इसी रणनीति का हिस्सा था। असहनीय दर्द के चारों ओर एक बौद्धिक किला बना लेना। वो निजी दुख से बचने के लिए इतिहास और विज्ञान के बड़े अव्यक्तिक नियमों में शायद एक तरह की पनाह ढूंढ रहे थे।
अगर हमें एडम्स की इस लंबी और जटिल शिक्षा यात्रा के तीन सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हों तो वो कौन से होंगे? पहला कौन सा मानेंगे आप?
मेरे ख्याल से पहला अहम मोड़ था उनका लंदन में बिताया गया समय, 1861 से 1888 तक, जब वो अपने पिता के सचिव थे। वो उनकी असली राजनीतिक दीक्षा थी। उन्होंने सत्ता, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की असलियत को बहुत करीब से देखा, जो किताबों से बहुत अलग थी।
इसने उनके आदर्शवाद को तोड़ा।
हाँ, और शक्ति के प्रति एक गहरा संदेह पैदा किया।
और दूसरा मोड़ जो शायद सबसे निजी और पीड़ादायक था?
निसंदेह, 1885 में उनकी पत्नी क्लोवर की आत्महत्या। जैसा हमने कहा, ये उनकी किताब का अनकहा केंद्र है। इस घटना ने न सिर्फ उनकी निजी दुनिया उजाड़ दी, बल्कि उनकी बौद्धिक खोज को एक ज्यादा हताश, ज्यादा अस्तित्वगत एग्जिस्टेंशियल दिशा दी।
प्रेम, बुद्धि, साथ, सब जैसे नाकाफी साबित हुए।
हाँ, अब उन्हें जिंदगी की इस भयावह अराजकता को समझने के लिए और भी बड़े और भी अवैयक्तिक सिद्धांतों की जरूरत महसूस हुई होगी।
और तीसरा मोड़ जिसने उनके अंतिम विचारों को शक्ल दी,
वो था 1900 का पेरिस प्रदर्शनी का अनुभव और डायनेमो से सामना। ये वो पल था जब उन्हें अपना केंद्रीय रूपक, अपना मास्टर मेटाफर मिला। डायनेमो उनके लिए आधुनिक युग की विशाल, मूक, समझ से परे की शक्ति का प्रतीक बन गया,
और उन्होंने उसे वर्जिन की आध्यात्मिक शक्ति के बरक्स रखा।
बिल्कुल। इसी विरोधाभास ने उनके इतिहास के सिद्धांत को अंतिम रूप दिया और उनकी सोच को राजनीतिक इतिहास से हटाकर ऊर्जा, तकनीक और दर्शन के इतिहास की ओर ले गया।
तो हेनरी एडम्स के इस कुछ उलझे हुए, निराशावादी पर बेहद ईमानदार जीवन से आज हम क्या सीख सकते हैं, क्या मानवीय सबक मिलते हैं इससे?
सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि असली शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। ये जीवन भर चलने वाली अनुकूलन की, एडेप्टेशन की प्रक्रिया है, पुरानी धारणाओं को छोड़ने और लगातार बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाने की कोशिश करना।
एडम्स को लगा कि वो ये नहीं कर पाए।
हाँ, यही उनकी त्रासदी थी।
ये बात आज कितनी जरूरी है, जहाँ बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है, और ये भी कि अतीत हमेशा भविष्य का अच्छा गाइड नहीं होता।
बिल्कुल, एडम्स ने यही महसूस किया। एक पीढ़ी के स्किल्स, एक पीढ़ी के मूल्य अगली पीढ़ी के लिए शायद उतने काम के ना रहें। हमें लगातार सीखते रहना होगा, लचीला बनना होगा।
और शायद ये भी कि दुनिया में अर्थ ढूंढना नहीं पड़ता, बनाना पड़ता है। एडम्स एकता की तलाश में रहे पर मिले नहीं।
हाँ, ये बहुत अहम बात है। शायद इस खंडित दुनिया में हमें खुद ही अपने जीवन को, अपने अनुभवों को अर्थ देना होता है। व्यवस्था बनानी पड़ती है, वो तैयार नहीं मिलती।
और उनकी चुप्पी, जो बातें उन्होंने नहीं कही, जैसे पत्नी का जिक्र ना करना,
वो हमें याद दिलाता है कि मौन भी बहुत कुछ कहता है। कुछ अनुभव, कुछ दुख शायद शब्दों से परे होते हैं। जीवन की कहानी सिर्फ कही गई बातों से नहीं, अनकही बातों से भी बनती है।
तो आज के समय में एडम्स की कहानी क्यों महत्वपूर्ण है आज के लोगों के लिए?
क्योंकि उनका संघर्ष एक ऐसी दुनिया में दिशा और मतलब खोजना, जिसकी पुरानी निश्चितताएं टूट चुकी हों, वो कहीं ना कहीं हमारा भी संघर्ष है। हम भी तो तकनीकी बदलावों की इस अभूतपूर्व रफ्तार से जूझ रहे हैं, चाहे वो AI हो, इंटरनेट हो या क्लाइमेट चेंज।
हमें भी तो अक्सर लगता है कि हमारी शिक्षा, हमारी समझ शायद कम पड़ रही है।
बिल्कुल, एडम्स का वो अकेलापन, वो भटकाव, वो चिंताएं, ये सब आज के आधुनिक जीवन के बहुत जाने पहचाने अनुभव हैं।
चलिए इस गहरी चर्चा को तीन अंतिम निष्कर्षों में समेटते हैं। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि।
एडम्स की किताब का वो 20 साल का मौन, खासकर पत्नी की मृत्यु के बाद का, वो उनके गहरे अनकहे दुख को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे व्यक्तिगत त्रासदी हमारे दुनिया को देखने के नजरिए को, हमारी बौद्धिक खोज को बुनियादी तौर पर बदल सकती है और हमें अर्थ और व्यवस्था की तलाश में और बेचैन कर सकती है।
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
वर्जिन और डायनेमो का वो शक्तिशाली रूपक, ये अतीत की एकीकृत आध्यात्मिक शक्तियों और आधुनिकता की बिखरी हुई तकनीकी शक्तियों के बीच के तनाव को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। ये समझाता है कि एडम्स जैसे व्यक्ति को क्यों लगा कि उसकी पारंपरिक शिक्षा नई सदी के लिए अपर्याप्त थी।
और अंत में, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि।
सच्ची शिक्षा सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, ये वो लचीलापन, वो विनम्रता विकसित करना है जिससे हम एक लगातार बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठा सकें। एक ऐसी दुनिया जिसे हम शायद कभी पूरी तरह समझ या नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ये स्वीकार करना कि हम हमेशा कुछ हद तक अशिक्षित ही रहेंगे, शायद यही सबसे बड़ी शिक्षा है।
ये आधुनिक युग की एक केंद्रीय चुनौती है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। हेनरी एडम्स की कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारी अपनी शिक्षा हमें आज की और आने वाली दुनिया की जटिलताओं के लिए वाकई तैयार कर रही है?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।